नमस्कार, आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार स्टेशन पर अब तक का सबसे बड़ा फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया। आज गुड फ्राइडे है और खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट।
सचिव ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलती जा रही हैं, जिससे लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। राज्यों को सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सटीक जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करने और नियमित जनसंचार बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
दिल्ली पुलिस एलपीजी सिलेंडरों के जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डुम्बरे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कल इस संबंध में 4 मामले दर्ज किए गए और छापेमारी भी की गई। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
दिल्ली पुलिस जो है होर्डिंग और ब्लैक मार्केट को लेके जो भी लीगल एक्शन है वो कर रही है। कल की डेट में भी 4 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, रेड्स भी हुई है, तो हम इस पे 3 लेवल पे काम कर रहे हैं।
उद्योग जगत ने सरकार के कई महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट देने के निर्णय का स्वागत किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहर्ष दमानी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया ये एक एहतियाती कदम है, जिससे ऑटो क्षेत्र को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और पॉलीमर जैसे कई घटक पेट्रोकेमिकल पर निर्भर करते हैं, इसलिए छूट व्यवधान के जोखिम को कम करेगी और लागत के दबाव को नियंत्रित करेगी। श्री दमानी ने कहा कि ये कदम वैश्विक अस्थिरता के बीच भी स्पेयर पार्ट्स और उपभोग सामग्रियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 का पारित होना जीवन और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये विधेयक कई कानूनी प्रावधानों को कम करके सभी के लिए जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने, व्यवसाय और व्यक्तियों पर कानूनी नियमों, सरकारी नीतियों और कर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय, वित्त और प्रशासनिक दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें लाभ पहुंचाना और जीवन और व्यापार में सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना है।
हमने एक ही कानून के अंतर्गत संसद के 79 अलग अलग अधिनियमों से संबंधित 1000 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सरल बनाया है और आम आदमी, लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए इसे आसान बना दिया गया है। वास्तव में ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
In our journey towards Viksit Bharat 2047.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 का स्वागत करते हुए कहा कि ये विधेयक विश्वास और पारदर्शिता के आधार पर जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अनुपालन बोझ को कम करने और पुराने दंडात्मक प्रावधानों को हटाने के माध्यम से ये विधेयक नागरिकों, एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आनंद विहार स्टेशन पर अब तक का सबसे बड़ा फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन आज से आरंभ कर दिया है। एनसीआरटीसी ने बताया कि ये स्टेशन एक ही समय में 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये चार्जिंग यूनिट्स चौपहिया वाहनों को मात्र 30 मिनट में लगभग 80% तक चार्ज करने की क्षमता रखती है। इस सुविधा के आरंभ होने के साथ ही अब साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ साउथ सहित कॉरिडोर के कुल 8 स्टेशनों पर ई वाहन चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इन स्टेशनों पर फास्ट और सामान्य दोनों श्रेणी के चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यबल की 128वीं बैठक की। इसमें 14 से 26 मार्च के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए प्रवर्तन और निरीक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों, धूल और डीजल जनरेटर से होने वाले वायु प्रदूषण की स्थिति के निरीक्षण कार्यों पर चर्चा की गई। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 10 इकाइयों को बंद करने, 27 इकाइयों के डीजल जनरेटर सेट सील करने, 8 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और 1 इकाई के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को एक अलग श्रेणी के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में UGC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद UGC विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और NCERT को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मंत्रालय ने NCERT अनुसंधान कार्यक्रमों और डॉक्टरेट तथा नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। NCERT एक स्वायत्त संगठन है। सरकार ने वर्ष 1961 में इसकी स्थापना स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और परामर्श देने के लिए की थी। NCERT का उद्देश्य स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार और प्रकाशित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
राजधानी दिल्ली में आज से इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय उत्सव में भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत और समकालीन सांस्कृतिक विमर्श को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस महीने की 5 तारीख तक चलने वाले इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता, 50 से अधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साहित्यिक सत्र, युवा टाउन हॉल और विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह महोत्सव दिल्ली की ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इसमें हिस्सा लें और दिल्ली के वास्तविक इतिहास को जानें।
मैं सबसे अपील करता हूं, यहां इंडिया हैबिटेट सेंटर में आप लोग जरूर आइए। दिल्ली का जो असली इतिहास है वो सालों से छुपाया गया, दबाया गया, नहीं दिखाया गया, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इतिहास के साथ साथ कला, संस्कृति, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है और पूरा भारत का जो एक लघु रूप दिल्ली में मिलता है का सेलिब्रेशन है।
महोत्सव के उद्घाटन सत्र में जाने माने इतिहासकार, लेखक, कलाकार और साहित्यकार उपस्थित रहे। आने वाले 3 दिनों में महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गहन संवाद सत्र सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 1 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ हिमाचल प्रदेश से लाई गई थी, जिसकी आपूर्ति मुंबई में की जानी थी। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज गुड फ्राइडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि ये दिन लोगों को करुणा, क्षमा और सेवा के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इन मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज में शांति तथा भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि ये दिन लोगों के मन में शांति, सद्भाव और सेवा के प्रति संकल्प को मजबूत करेगा और उन्हें एक दयालु और समावेशी दुनिया बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये दिन लोगों को यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं को याद दिलाता है। उन्होंने आगे कहा कि यीशु मसीह का दया, क्षमा और करुणा का संदेश लोगों के लिए एक स्मरण के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली के विधि और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने देश भर में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के परिणाम स्वरूप आज भारत ने नक्सलियों से वास्तविक आजादी हासिल कर ली है।
देखिए, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी आज से 10 साल पहले कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाएंगे और देश में आग लगाएंगे, इस प्रकार के मैनिफेस्टो छापे जाते थे और कितने ही हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृहमंत्री जी के द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया गया, आज जो देश में नकली आजादी के नारे लगाते थे, आज वो नक्सलियों से ही आजादी भारत को मिल चुकी है। और अर्बन नक्सली जरूर कुछ बचे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार की सांस्कृतिक चेतना का उभार देश में हो रहा है कि अर्बन नक्सलियों से भी आजादी निश्चित मिल जाएगी।
राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर राघव चड्ढा ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने हमेशा से संसद में आम जनता की परेशानियों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की है, जिससे नागरिकों को फायदा मिला है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने के अधिकार को सीमित करने की कोशिश करना अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में PMML अभिलेखागार शीर्षक से एक ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी आम जनता को भारत के आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की झलक पेश करती है। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के पत्रों सहित अभिलेखीय संग्रह प्रदर्शित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समुदायों सहित देश के युवाओं की खेल प्रतिभा राष्ट्र के लिए अमूल्य सामाजिक पूंजी है। आदिवासी खेल प्रतिभा हमारा राष्ट्रीय गौरव शीर्षक से आज अपने लेख में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 से बनी खेल गति को निरंतर मजबूत करने से ऐसे खिलाड़ियों का समूह तैयार होगा जो भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गए। प्रतियोगिता में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ओडिशा 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज अरुण जेटली स्टेडियम का दौरा किया और कल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों से बातचीत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के ग्रीन बजट के बाद दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना 2026 लागू कर दिया है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार स्टेशन पर अब तक सबसे बड़ा फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया। आज गुड फ्राइडे है और खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज सम्पन्न हुए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।